प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
अब हम फिर आते हैं वही ये संत मत प्रकाश भाग एक पर। इसके परमात्मा की वाणी पढ़ रहे थे हम पृष्ठ 17 पर। अब यहां से हमने शुरुआत की थी तो हम आगे चल पड़े। यहां से शुरुआत करते करते हमारे थे करने नोदीदा महल में प्यारा है, ये कबीर साहब की वाणी है। ये मंत्र सारे हम आपको बता चुके हैं। फिर आगे त्रिवेणी के संत समाओ, चंद सूर्य का घर लाओ, सुषुम्न सेती ध्यान लगाओ, ये श्वास के समण की ओर संकेत है। अब ये सारा कुछ परमात्मा ने बता दिया। घंटा सुसंग सुनो दंदोई, सेंस कमल दस जगमग होई, तामद करता नरखो सोई, बंगनाल दस पारा है, सत नाम सुन भागे सारे। वो दो अक्षर का मंत्र सुनकर डाकनी साकनी बहु के लकारे, जम संग कर धर्म धूप अंकारे, सत नाम सुन भागे सारे जब सतगुरु नाम उचारा है। अहे सतनाम जो सतगुरु से मिला हुआ सच्चा नाम जब उच्चारण किया सारे भाग्य। अब आगे चलो हम अपने मतलब की बात देखेंगे इसमें। अब हम यहाँ आ जाते हैं आगे। इसने सारा कुछ बता दिया आगे क्या क्या है। और यहाँ आगे हम षोडश भानु हंस को रूपा और बिना सतधुन बजे अनुपा, हंस कृत संवर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। यहां देखो नीचे तें सैस 88 दीप रचाए और हीरे पन्ने लाल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहम झनकारा है, सोहम हद तजी जब भाई, सत लोक की हद पुन आई, और उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। अब देखो यहां पर आगे षोडश भानु हंस को रूपा, जब सतलोक में पहुंच गए, यहां बताया है कि सोहम हंस तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनाई, जब सतलोक में जीवात्मा पहुंच जाती है तो उसका 16 सूर्य जितना तेज बन जाता उसके रूप का। षोडश भानु हंस को रूपा, षोडश माने 16, भानु माने सूर्य, हंस माने उस पुण्यात्मा जो यहां से स्वच्छ होकर के भक्ति करके ऊपर जाता है सतलोक में। और बिना सत धुन बजे अनुपा, ये 25वीं कड़ी है। हंस करत चौर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। अब देखो कहते हैं जब वो सतलोक में पहुंच जाती आत्मा, उसका 16 सूर्य जितना रूप बन जाता है, और वहां पर एक बिना सत धुन वह धुन वहां बज रही है। तो सतलोक में वो धुन बिना सत धुन, आगे देखो, और हंस करत चौर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। सत पुरुष भी मनुष्य दृश्य है, उसके ऊपर वहां गया हुआ हंस, वो हंस आत्मा यानी भक्त अपने परमात्मा के सिर पर चंवर करता है। अविन की छुरी क्या है अज्ञानियों की, के मोक्ष प्राप्त प्राणी आत्मा ऊपर सत पुरुष में वहां चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान नहीं है, वो तो समुद्र है एक प्रकाश का, और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे अज्ञानियों, वाणी तले रे परमात्मा कबीर साहब की, अदमन ग्रंथ काल के दूतों ये तो पहले न बता रहे थे निराकार निराकार, और परमात्मा ने बता रखा है साकार है, मनुष्य दृश्य है, उसके एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना तेज है उस परम पिता का, और वहां गई हुई आत्मा उसके चंवर करते हैं, तो समुद्र में लीन होगी बूंद चंवर की स्पर्श करेगी, वहां भगवान है ही नहीं। तो ये देखो, सोडस बानु हंस को रूपा, सोला सूर्य जैसा प्रकाश हो जाता है, और बिना सत धुन बजे अनुपा, या सत धुन असली धुन वहां पर बज रही है। हंसा कर चंवर सिर भूपा, भूप माने उस राजा के, सारी सृष्टि के मालिक भगवान के सिर पर चंवर करता है, और वो सत पुरुष दरबारा है, वो सत पुरुष का दरबार सतलोक सचखंड है। और कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दरबारा है। कहते हैं उस पुरुष माने सतपुरुष परमात्मा के एक रोम कूप में करोड़ सूर्य, कोटिन भानु कोटि करोड़ सूर्य, और इतने ही फिर चंद चंद्रमा दोनों मिला दे, और पुरुष रोम सम एक ना होई, परमात्मा के एक रोम कूप की रोशनी के बराबर उनका, इन दोनों करोड़ करोड़ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी सही नहीं, पूरा नहीं होता, फीका रहता है। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसे परमात्मा का दर्शन है, वो देखा जाता है, ये है वो प्रकाश ही प्रकाश है, और उसमें आत्मा जाकर डूब के मर जाती है। अरे फूटे बाघ तुम्हारे, तुम ऐसे गुरु हमारे। अब देखो, इव सतपुरुष से आगे की बातें बताई हैं, आगे अलख लोक है, उस तो आगे उसकी अरब सूर्य जितनी एक रोम कूप की शोभा है, फिर आगे अलख लोक है, अलख लोक है, फिर अगम लोक, फिर अके लोक है, ये सब बता करके फिर क्या बताया है कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पेंड मझारा। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं शब्द के माध्यम से, जो ये समझ नहीं सके इनके गुरु लोग, इसमें ये बताया कि ये जो मैंने बताया है ये सतलोक के अंदर है, लेकिन इस माया ने, इस दुर्गा ने काल के आदेश से उस सतलोक की झूठी रचना इस पिंड के अंदर कर रखी है, इस ब्रह्मांड में बना रखी है, और इस वह पिंड में दिखा है तुमने, या सारी काल की रचना जो काल ने नकली बना रखी वह इस पिंड में दिखा है, हमारा लोक तो इस तो बाहर है। आगे देखो, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, पिंड मानियो शरीर, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया दुर्गा ने, आदि माया किन्नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगत रचना रची अंडमाही, उस अवगत की ऊपर के लोग जिसकी गति कोई नहीं जानता, उस सतलोक सत अगम लोक अखम लोक अकलोक की रचना रची अंडमाही, इस ब्रह्मांड कहो चाहे अंड कहो, और ताका प्रतिबिंब डारा है। ओहो, आदि माया की नहीं चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। परमात्मा कहते जो मैंने अभी तक तुम्हारे शरीर के में बताया, इस शरीर में ऐसी ऐसी वस्तुएं बना रखी इस काल ने, और ये है तो वो ओरिजिनल तो सतलोक में, इसने झूठी बना दी इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड से आपका जो से चैनल बना दिए इसमें, इस शरीर के जो चैनल है ये केवल आपके इस ब्रह्मांड तक की वस्तुओं को ही दृष्टिगोचर करवा रहे हैं, इससे बाहर सतलोक की इसमें कुछ भी देखने की नहीं है, ना वह धुन है जो वास्तविक धुन सतलोक में है देखना। आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अविगत रचना रची अंडमाही, इस अवगत उस परमात्मा के ऊपर के लोगों की रचना इस अंड ब्रह्मांड में रच दी, और उस सच्ची रचना का प्रतिबिंब यानी नकल यहाँ पर डाल दी, प्रतिबिंब डारा है, ओनली नकल बनाई है, और फिर क्या निर्णय करते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। शब्द विहंगम चाल हमारी, जैसे पक्षी उड़कर चला जाता है, तुम्हारी इस यहां की जो साधनाएं तुम करते हो, इस शरीर के अंदर खसम खसा रहते हो, इसमें नहीं, हम तो ऐसे जाएंगे जैसे पक्षी उड़कर चला जाता। शब्द विहंगम, विहंगम माने पक्षी। उस हमारे नाम की शक्ति से चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दी तारी, हमारे सतगुरु ने यह चाबी दे दी जिससे सारा ज्ञान खुल गया। और खुले कपाट शब्द जानकारी, ओहो अंड पेंड पेंड अंड के पार सो देश हमारा है। ये कति क्लियर कंसेप्ट कर दिया कि जो तुम शरीर के अंदर देखो हो, ये काया भेद किया निर्वारा, तुम्हारी काया में ये सांग जोड़ रखा है इस झूठी बाजी का। सो और ये सब रचना पेंड में धारा, इस पेंड कहो चाहे शरीर कहो, यानी ये पेंड है, ये शरीर टीवी है, ये ब्रह्मांड है, इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंड आकार है, और यो है एक ब्रह्मांड। उसके अंदर पूरे उस परमात्मा की सारी रचना इस ब्रह्मांड में रच दी उसने, उसका प्रतिबिंब इसमें है, तुम इसमें जख मार रहे हो, इसमें तो है नहीं। अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब ने कहा है, कोई है रे परले पार का जो भेद कह जनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे जनकार का। असली धुन तो कहते वहां बदरी है सत धुन, या तो नकली धुन है इस काल की, आंख बांध कर कान बंद करके बहरे हो गए। ये तो अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है, जो इसमें धुन सुना हुआ सब काल की धुन है। बोलो सतगुरु दे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे पिता हैं। हम प्राणी यहां काल के जाल में फंसे हुए हैं, आपको सृष्टि रचना के सुनने से पता चलता है कि हम कैसे यहां फंसे और किस प्रकार वो परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं। ठीक है, हमसे गलती बन गई, ऐसी गलती हमसे बनी जो अक्षमा योग्य नहीं थी, फिर भी कहते हैं पूत पिता से बेमुख होई तो भी पिता जान मल धोई। यदि पिता से पुत्र विमुख हो जाता है और वो फिर भटक कर धक्के खा कर कष्ट उठा करके और पुनः अपने पिता की शरण में आ जाता है, तो सब उसके अवगुणों को जानते हुए भी अपने पिता उनको क्षमा कर देते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे पिता हैं, हमसे गलती हुई और जिस कारण से हम यहां इतना कष्ट उठा रहे हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, हमने कभी जोर देकर सोचा ही नहीं कि ये हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। जन्म होता है, खुशी मनाई जाती है, मृत्यु होता है, हाहाकार मच जाता है। कोई रोगी है, कोई कोडी है, किसी का अंग भंग है, कोई व्यवसाय के कारण कष्ट में है, कोई धन अधिक होने से दुखी, कोई धन के बिना दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई संतान के बिना दुखी। आजीवन इस शरीर को ही सुरक्षित रखने के लिए, इसी को चालू रखने के लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं, सौ जगह झूठ बोलते हैं, ना जाने कितने पाप कर डालते हैं बगैर ज्ञान के, फिर उनका दंड भोगने के लिए पशु पक्षी आदि योनियों में हमें जाना पड़ता है। खाओ पियो, फ्रेश हो जाओ, फिर खाओ पियो, सो जाओ, पढ़ के उठते फिर धंधे पर लग जाओ, और इसी प्रोसेस में कभी अचानक मृत्यु हो जाती है। जिन कार्यों को हम अति अनिवार्य जानते हैं वो अधूरे ही रह जाते हैं, हम चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आपको आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इधर सोच भी नहीं सकते, इस मार्ग पर कदम भी नहीं रख सकते। आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान पूर्ण संत दिया करते हैं और स्वयं परमात्मा आकर ही वो यथार्थ ज्ञान प्रदान किया करते हैं। फिर उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले वो भी फिर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ही प्रचार किया करते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया वो संख्या में थोड़े थे, और जिन्होंने जनता को बरगलाया झूठी कथा सुना के, शास्त्र विरुद्ध साधना बता के, काल के जाल में फंसाया, वो बिना गिनती के असंख्य हैं। तो हमारे आसपास जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो अज्ञान था, और जिन महापुरुषों ने ज्ञान दिया वो संख्या में कम थे, उनके ज्ञान पर हमें विश्वास हुआ नहीं क्योंकि हमें बरगलाने वाले घने व्यक्ति थे। उसका कारण क्या था कि हम उनके बहकावे में आ जाते थे? उसका कारण ये था कि हम अशिक्षित थे। और जिनको हम आचार्य, गुरु, ब्राह्मण, मंडलेश्वर, महर्षि माना करते थे वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। एक भाषा विशेष के जान लेने से कोई महर्षि नहीं बन जाता या कोई संत नहीं बन जाता, विद्वान नहीं बन जाता। कोई संस्कृत में विद्वान है तो इंग्लिश में वो अविद्वान है, उसको कख नहीं पता उसका। विद्वान कौन होता है? जिसको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, चाहे वो अक्षर ज्ञान भी नहीं रखता। भाषा प्रथम है, लिपि बाद में बनी है, व्याकरण भी उसी से बनाई जाती है। तो पुण्यात्मा आज आपको वो सु अवसर प्राप्त हुआ है जो कभी आपको असंख्यों युगों के बाद प्राप्त हुआ होगा। कौन सा सु अवसर? कि ये पिछली पीढ़ी का समय, ये परमात्मा के ठीक का समय, कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाना और इस अध्यात्म ज्ञान का और सतनाम का और सारनाम का सार्वजनिक करने का अवसर समय परमात्मा ने दिया है। और इस समय आपका मानव शरीर, तो पुण्यात्माओं आपके किस्मत का कोई पैमाना नहीं जिसे नापी जा सके आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, लेकिन जो मार्ग आपको प्राप्त हुआ है इसके ऊपर अंतिम सांस तक दृढ़ रहना है। जरा सा भी गलती खा गए, चाहे अंतिम समय में भी आप इस मार्ग से विचलित हो गए तो काल के जाल में रह जाओगे, लेकिन आपका किया हुआ ये भक्ति क्रम, सिमरण, सेवादान, ये आपके साथ रहेगा। लेकिन वो साथ तो रहेगा और वो आपको यह संसारी काल का सुख भी अत्यधिक प्रदान कर देगा, लेकिन लाभ क्या हुआ उससे? जो उद्देश्य था वो तो रह गया। जो पुण्यात्मा आज इस भक्ति युग में परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आएंगे, और ये ऐसे मंत्र हैं जो बहुत ही जल्दी आपको भक्ति से चार्ज कर देंगे। जैसे बैटरी बिल्कुल डेड होगी यानी डाउन होगी कति, और चार्जर पर लगा दो स्टार्ट होगी तो घंटे दो घंटे में वह चार्ज भी हो जाएगी। जब तक चार्जर ही नहीं लगाएंगे तो वो डेड हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो पुण्यकर्मी प्राणी गुरु पद पर विराजमान है वर्तमान में या पहले कभी रहे हैं, परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से परिचित हुए, क्योंकि उनको तो चार्जर मिल गया था, सतनाम मिल गया था। अन्य जितने भी हैं वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और वो भक्त, वो श्रद्धालु जो इन नकली संतों के फंस गए। ये भी पिछले जन्म के भक्ति से चार्ज थे, आगे इनको चार्जर मिला नहीं। चार्जर मीन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, शास्त्र विधि अनुसार ये सत साधना प्राप्त हुई नहीं, तो जिस कारण से उनकी पिछले जन्म की बैटरी यानी पुनकर्म रहे तब तक चार्ज रही वो बैटरी, तब तक तो उनके घरों में सारे सुख दिखाई देते थे, और फिर एकदम ही वो सुविधाएं समाप्त हुई जो ये मान रहे थे कि हम इन राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तकों द्वारा संतों द्वारा दिए मंत्रों को जाप कर रहे हैं जिस कारण से हमें सुख हो रहे हैं। आज उनके घरों में कैर टूट रहे हैं। पुणात्माओं, ये काल का जाल है। काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनकी आस्था हट जाए भगवान से, और परमात्मा ये चाहता है कि जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय आवे तब तक इनकी आस्था भगवान में बनी रहे। कुछ ऐसी लीला वो स्वयं ही करने आते हैं, ऐसी लीलाएं करके जाते हैं जिससे हमारा भगवान में विश्वास दृढ़ रहता है। जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाना, ये श्री कृष्ण के बस की बात नहीं थी, परमात्मा ने स्वयं लीला की थी। सोचल चिद्र मैं करूं अपने जन के काज, तो उनका चीर बढ़ाया था परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में आके, तो आज तक हमारी भगवान के प्रति दृढ़ता रही। फिर बीच में ये काल के दूत आ गए, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये महर्षि दयानंद जैसे अज्ञानियों ने, कि ये कभी नहीं हो सकता। अरे जब भगवान मनुष्य जैसे कर्म करेगा तो भगवान कहां से हो गया फिर? वो परमात्मा उसी को कहते जो अनहोनी को होनी कर दे और होनी को करे अनहोनी। तो अब ये नास्तिकता की तरफ चल पड़े थे। अब जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये महापुरुष थे, पुनकर्मी प्राणी थे पिछले जन्मों के, ये स्वर्ग में से सीधे पृथ्वी पर जन्मे थे और राजा के घर जन्म हुआ, राज को भी त्याग दिया क्योंकि जो सुख इन्होंने स्वर्ग में देखा था वो यहाँ के राज्य में नहीं होता, तो इसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई इस सुख से, घर त्याग दिया भगवान प्राप्ति के लिए, पुनः उस स्थान की प्राप्ति के लिए। आगे कोई संत सा मिला नहीं जो मार्गदर्शन ठीक कर दे, इसने हठ योग किया, गया के अंदर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना शुरू की। अब ये हठ योग के विषय में गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6-7 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं उनको राक्षस स्वभाव को जान, वो मुझे भी और अंत शरीर के अंदर जितने बैठे हैं ये प्रधान इनको भी क्रश करते हैं ये राक्षस स्वभाव के। तो कहने का भाव ये है कि मरने को हो गया महात्मा बुद्ध, एक माई ने उसके मुख का खीर लगा दी, सहज से धीरे धीरे चाटने लग गया, अगले दिन उसने अच्छी खीर खाई, धीरे धीरे फिर वो शरीर स्वस्थ हुआ, चार्ज हुआ उसका शरीर, अन्न के बिना वो कंटी कंडम हो गया था। फिर उसने अपना विधान बता दिया, अपना अनुभव के स्टार्वेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अब भूखा मरण की कही थी किसने उसने? कौन से शास्त्र में लिखा है कि भूखा मरण परमात्मा मिलेगा? आप पे तो हठ योग करें, बकवाद करें, शास्त्र विधि त्याग कर साधनाएं करें, फिर उनसे कुछ मिलना ही नहीं, फिर अपने अनुभव बताने लग जाते हैं। श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये योग अर्थात भक्ति न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की, ये अंत्याग दे निराहार रह करके व्रत रखते हैं, और ना गणित जागने वाले की और ना अधिक सोने वाले की, कभी सफल नहीं होती, सफल नहीं होती। तो हमारे सदग्रंथ हमें गाइडलाइन कर रहे हैं, इनका इनको कख पता नहीं था। तो फिर क्या होता है, ये पुनकर्मी प्राणी था पिछले जन्म का, इसकी वचन में भी शक्ति थी, और जिस कारण से इसने अपने ऐसा विधान बना दिया जो आम जनता को पसंद था, और लाखों लोग इसके पीछे अनुयायी बन गए महात्मा बुद्ध के, और जो दीक्षा महात्मा बुद्ध देता था वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को आध्यात्मिक लाभ कोई नहीं हुआ। कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि पहले तो सभी भगवान को चाहने वाले व्यक्ति थे, धीरे धीरे नष्ट तीसरी चौथी पांचवीं छठी पीढ़ी में जाकर के, पहले तो पुण्यकर्मी प्राणी थे उसके अनुयायी, उनको अपने आप पिछले संस्कारों से लाभ होता रहा। वो सोचते रहे कि जो हमारे गुरुजी ने हमें साधना बताई है इससे हमें लाभ हो रहा है, आगे चलकर उन्हीं साधना के करने वाली अगली पीढ़ियों को कोई लाभ नहीं हुआ, तो अंत में नास्तिक बन गए कि कुछ नहीं होता भगवान की भक्ति से, क्योंकि उनकी भक्ति ये ठीक नहीं था, होगा कैसे। जिस कारण से पूरा चीन, जो विश्व की लगभग आधी आबादी बताते हैं, वो सारा नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट कहने लग गया अपने आप में, भगवान से दूर आदमी। और जो ये कहता है कि कुछ भी नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, अपने आप सृष्टि बनती है, नर्मदा से उत्पन्न होती है, इसके विषय में गीता जी में लिखा है 17वें अध्याय के 4, 5, 6 श्लोक के अंदर और 10, 11 के अंदर, कि जो व्यक्ति ये कहता कि भगवान नहीं है और ये नर्मदा से उत्पन्न होती है सृष्टि, वो उसके विषय में लिखा कि वो नास्तिक और संसार का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्मा है, वो ऐसे निकम्मे आदमी बताए। तो पुण्यात्माओं, अब यही चाल काल ने चाल रखी है, ये निरंकारी पंथ और एक यु ब्रह्मा कुमारी पंथ, एक यु राधा स्वामी और सच्चा सौदा सरसा वालों का पंथ, जय गुरुदेव पंथ, दिनोद भिवाणी वाले का पंथ, यु राधा स्वामी एक कुए का जल है सारा, ये काल के सुनियोजित जाल हैं। अपुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज 2012 होगी, 18 वर्ष हो गए गला पड़ाते ने, और बुंडा अच्छा कहें मुझे, मैं सच्चा ज्ञान बताऊं, मुझे बुरा कहें, और मुश्किल से ये 10-1 लाख व्यक्ति हुए होंगे, और वहां देखो ये भगवान करोड़ों की संख्या में, क्योंकि वहां तो काल का भाव है, कितने जाओ काल प्रेरित करके भेजता है ना, वहां ले लो नाम, वहां सब ठीक है। अब ये दास गांव गांव में सत्संग करने जाता था, अब सत्संग तो सुनते हमारा इस दास का, और सत्संग सुनने के बाद आत्मा बेचैन हो जाती है, तरफ उठती है भगवान के लिए। जब नाम की कहते कि दीक्षा ले लो, फिर क्या कहते ना, दीक्षा तो हम कहीं और से लेंगे, बड़े गुरुओं से। वो बड़े गुरु कौन, किराधा स्वामी वाले, वहां लाखों व्यक्ति जाते हैं, आपके पास तो 50 व्यक्ति सत्संग सुनने आ रहे हैं, शुरू शुरू की बातें। मैं कहा भाई बड़ा काल ने बड़ा काम कराए, तो अब सत्संग सुने हमारा, हर नाम ले वो सच्चा सौदाड़े का जाकर सरसा गया। और फिर दूसरा कारण क्या था कि हम सभी बुराई छुड़वाते हैं, बीड़ी शराब मांस तमाकू हुक्का सिगरेट और अन्य जो भक्ति बाधक हमारी रीतियां हैं वो भी नहीं हमने करनी। तो वो क्या कहते हैं, भाई बीड़ी तो नहीं छूटे, कोई कहता भी मैंने नाम लेना है किसी से, वो पता लगता है कि ये कोई दूसरे गुरु से उपदेशी है, उसके पास जाकर उसने कहा कि मैंने नाम लेना है लेकिन मैं बीड़ी नहीं छोड़ दूंगा, तो कहते दादा स्वामी वाले और धन धन सतगुरु वाले कहते बीड़ी की कोई बात नहीं, आ जा तेना नाम दुआ के लिया। वो गिल गिल हो लिया, बस बीड़ी छोड़नी नहीं, नाम गुरु जी का ले लिया, मोक्ष हो जाएगा, अब खाक मोक्ष होगा उसका। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लाई, उसने बताया कि ये मेरी बहन है, वो उसकी बहन पहले से दीक्षित थी दास से, उसने जो हमारे से दीक्षित थी भगवान कबीर साहब की शरण में थी, उसने बताया जी ये मेरी बहन है और 8-7 वर्ष से ये राधा स्वामी का नाम ले रही है और इसकी इतनी दुर्गति हो रही है, वे बुरा हाल हो गया इसके घर का, और मुश्किल से मना के लाई हूं, न्यो कहे गुरु ना बदला करते। और जो उसके आसपास की जो औरतें थी वो न्यो कहती थी, गुरु तो ईसा बदल लिया, ऐसा खसम बदल लिया, रफूटे बाग थरे। गुरु का नाता अलग है, गुरु एज ए डॉक्टर, पति अपने स्थान पर है, जैसे एक डॉक्टर से रोग निनाश हो रहा तो 6 बदलने चाहिए अपना जीवन बचाने के लिए, ये कोई बात है। फिर दूसरा न्यू बोली, मैंने पता था कि ये बीड़ी बैड़ी पिया करे। मैंने कहा बहन तू बीड़ी भी पीती होगी? हां जी, बीड़ी छोड़नी पड़ेगी। कहने लगी ठीक है छोड़ दूंगी, छूटेगी तो मैं, ऐसा नहीं ये छोड़नी पड़ेगी, अगली छोड़ दूंगी। वो न कहने लगी, बोला जी पहले तो मैं नहीं पीती थी, नाम लेने के बाद पीण लग गई। अरे थोड़े फोटे बाग नाम ले पा छोड़ा करें, शुरू कराया करें, तारी सारी उल्टी रीति। वो कहने लगे जी मैं पहले नहीं पीती थी, सत्संग करती थी गांव में, औरतें जैसे उनकी चर्चा होती है ज्ञान चर्चा, तो वहां बीड़ी का प्रसाद देते हैं, एक प्लेट में खोल के बीड़ी अलग अलग और माचिस बीच में एक रख देते हैं, और सब ने अनिवार्य होता है प्रसाद पी ले, क्यों शिवदयाल जी भी होक्का पाड़ा करता, तेन का होके कोई आंट नहीं तम्बाखू की। और परमात्मा कहते अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, बांग तम्बाखू छोतरा आफू और शराब, कह कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करें खराब। अब प्रसंग चल रहा है, उसी पर आते हैं। तो वहां से नाम ले आओ है, क्यों वहां कोई मर्यादा की आवश्यकता नहीं, सारे संसारी कर्म वैसे ही करते हैं जो एक भगत को नहीं करने चाहिए। तो कहने का भावदास का ये है कि ये सभी पंथ काल के चलाए हुए हैं, जैसा आपने पहले भी सुना है कि काल ने कहा था कि कलयुग में जब आप भेजोगे अपना अंश, जैसे परमात्मा ने कहा कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी। क्या साची होगी? कि मैं कलयुग में उस 5500 जो वर्ष कलयुग बीत जाएगा अपना अंश भेजूंगा, अपनी प्यारी आत्मा, अपना दास भेजूंगा, और वो सतनाम देने का अधिकारी होगा। उसके ज्ञान को सुनकर के सभी पंथ और सभी मजहब भक्ति करेंगे, विधिवत सब बुराई छोड़ देंगे और सभी एक हो जाएंगे, और पूरे विश्व में सतनाम का जाप करके सिमरन करके मोक्ष प्राप्त करेंगे और सब बुराई से दूर हो जाएंगे। सतयुग जैसा माहौल पूरी पृथ्वी पर इस भक्ति युग में एक बार पुनः फिर होगा। तो तब काल ने कहा था कि मैं और भी बहुत से पंथ आपके सतलोक सचखंड के नाम ले लेकर चलवा दूंगा, और वो सभी पंथ वो नाम मेरा ही जाप करेंगे काल का, यानी सतनाम को छोड़कर और जितने भी मंत्र हैं और सार नाम आदि नाम को छोड़कर सभी जाप काल के हैं मंत्र विधि, और उनके जाप करने वाला काल कहता है मेरा ही होगा। ये प्रोमिस कराया था परमात्मा से, प्रार्थना करके वचनबद्ध किए थे, भगवान आपका नाम जपे आपका, आपकी भक्ति करें आपके, और मेरी करें वह मेरे। तो एक सतनाम और सार नाम को छोड़कर सभी मंत्र काल के हैं, तो अपने आप काल के जाल में रहेंगे। तो इस काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं। वो 12 पंथों से अलग कहता और अनेक, जैसे ब्रह्मा कुमारी राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदादर माल वाली और सरसा पंथ, और ये जय गुरुदेव पंथ, वे 5 नाम जाप करते हैं। सच्चा सौदादर थोड़ी सी चतुरता कर ली, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये कोई मंत्र है? यदि एक महिमात्मक नाम है, उस परमात्मा के उपमात्मक नाम है, उसको तो हमने पाना है, उस सतपुरुष को अकाल मूर्त को जल की महिमा सुनाई जा रही है, जल पानी नीर करते रहो, क्या जल मिल जाएगा? उस जल पानी नीर को तो हमने ढूंढना है, उसका प्रोसेस अलग है, हैंडपंप लगाओ वो की मारो, और फिर हैंडपंप ऊपर लगेगा मशीन, और फिर उसकी पूजा करो, उसको हलाओ सेवा करो, वो जल निकलेगा। ऐसे ही सतनाम और आदि नाम और प्रथम के वो 5 नाम, ये पूरा प्रोसेस है उस जल को प्राप्ति का, उस सतपुरुष को प्राप्ति का। ये पूजा ही नहीं है, पूजा उसकी होती है जिसको इष्ट रूप में हम मानते हैं। जैसे एक पतिव्रता बेटी होती है, पतिव्रता पत्नी होती है, वो अपने ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जेठ भी होते हैं जेठानी भी होती है, देवर और देवरानी भी होती हैं, सास ससुर भी होते हैं, छोटी बड़ी ननद भी होती है, रिश्तेदार भी आते हैं और भी कोई मित्र प्यारे उसके पति और ससुर के आते हैं, तो सबका आदर करती है, सबसे प्यार से बोलती है और बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन वो उनकी पूजा नहीं कर रही, वो पूजा तो अपने पति की कर रही है। आदर सत्कार कोई अन्य वस्तु होता है, अब पूजा में और सत्कार में दिन रात का अंतर होता है। अब जैसे वो पहले ऐसे ढंग से रहती है घर में, पतिव्रता लड़की में सारे गुण व्याकर हैं, वो एक गुण से पतिव्रता नहीं बन जाती, वो तो पतिव्रता लठम लठा रहे तो सारे दिन ननंद गेला, कदे सास के साथ, कदे ससुर के ने गाली दे रही, वह क्या की पतिव्रता, वो तो कली आ रही है। तो पतिव्रता के अंदर सारे गुण व्याकर हैं, पतिव्रता तो है ही है, साथ में वचनव्रता भी होनी चाहिए, यानी ऐसे वचन बोले जो क्षण दुख ना दे। तो वो ऐसी लगती है कि जैसे सबको बहुत अच्छा प्यार देती है, सबको अपनी सी लगती है, लेकिन जब वो ज्वाइंट फैमिली अलग होती है, वो ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, इकट्ठा परिवार में रहती थी, जब वो भिन्न भिन्न होते हैं तो उसी में देखो पूजा किसकी करती थी, उसके हिस्से में एक चम्मच भी आई होगी उसको भी नहीं छोड़े, जब बैठा लाओगी कि मेरी है, अपने पति के साथ अपने घर में चली जाएगी, तो उसके हिस्से में आए हैं, फिर ना देखे उनकी तरफ जाकर भी। तो पुण्यात्माओं, हम यहाँ इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है, उसमें हमारे मुखिया कौन है, ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा और गणेश, और साथ में ये ब्रह्म, तो हम इनके साथ रह रहे हैं, ये हमारी ज्वाइंट फैमिली है, ये यहाँ के प्रधान हैं, तो यहाँ के प्रधानों से हमें जब तक हम यहाँ रहेंगे तो सभी सुविधाएं इसे प्राप्त होगी हमें, और जब हम यहाँ से चलेंगे तो हम इनकी जो साधना करते हैं ये पूजा नहीं करते, ये हमारा एक नैतिक धर्म बने, इनका सत्कार करें, बड़े छोटे का यथोचित सत्कार करना हमारा कर्तव्य बनता है, तो हम इनका सत्कार करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। जैसे आपने बैंक लोन ले रखा है और साथ में मीटर कनेक्शन ले रखा है, बिजली का, पानी का और टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, तो इन सब का जो तुम बिल भरते हैं आप, तो पूजा थोड़ी है, वो तो उनका देना है, उसको प्यार से दिया जाता है, प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार, अपना कंटेक्ट रखा जाता है, तो वो पूजा नहीं है, वो हमारा अपना जो एक शिष्टाचार होता है, उस आधार से हम उनको बैंक का लोन भर रहे हैं तो वो हम प्यार देते हैं, चाय पिलाते हैं, बैठो जी, आओ जी, और हम बैंक लोन ना देंगे तो अगले दिन गाड़ी लेकर खड़े होंगे, अब भाई तेरा सील करते हैं। तो इसी प्रकार हमने सतलोक चलना है, और यहाँ के जितने भी ये प्रधान हैं इनका कर्जा हमने उतारना है, उस कर्जे को उतारने के लिए, उस लोन को उतारने के लिए हमने कौन कौन सी साधनाएं करनी है, कौन कौन सी मजदूरी करनी है। साधना का अर्थ मजदूरी होता है और पूजा अलग होती है, तो साधना तो प्रोसेस है, जैसे हम पूजा तो करते हैं जल की, और साधना कौन सी है, वो हैंडपंप लगाते हैं, वो हमारी साधना है, फिर ऊपर मशीन लगाते हैं और मशीन लगा के फिर जल निकालते हैं, वो भी साधना में ही है, और उद्देश्य क्या है, सब मजदूरी करने का कि हमें जल मिले, तो जल के लिए सारा कुछ ये प्रोसेस हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये प्राथमिक चिकित्सा समझ लो आपकी, तो ये हमारी पूजा नहीं है, ये तो मजदूरी है, लेकिन पाना क्या हमने, हमने जल पाना है, वो अकाल मूर्त पाना है, वो सतपुरुष पाना है, उसका प्रोसेस है। ये पांच नाम प्रथम आपको दिए जाते हैं, तो ये पहले केवल पांच नाम ही दिए जाते थे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार मूल ज्ञान की तबार ना जाई, अभी इस मूल ज्ञान को सार्वजनिक नहीं करना, इन पांच नामों के जाप से बहुत लाभ होता है, यहां का संसारिक लाभ आपको कलम तोड़ मिल जाएगा इन पांच नामों से जो आपको साथ दिए जाते हैं। अब प्रथम और लास्ट इसके अतिरिक्त जो बीच के मंत्र हैं, इनसे आपकी संसारिक सुविधा बहुत मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये इतने गजब के मंत्र हैं, ये वास्तविक मंत्र हैं इन भगवानों के। जैसे कई लोग कहें कोई मंत्र दे दे गुरुजी, नहीं। अब जैसे खागड़ जोटे होते हैं, अपने भैंसे देखे हो, उन भैंसा भैंसा करें जा, वो कति नहीं देखे। अरे एक बार नो कर दे हुर्र, वो नो देखेगा बाज गए, तो उसका अट्रैक्शन हो गया, उसमें उसका अपने आप ही प्रभावित होता है, दौड़ा आवेगा फिर। तो ऐसे ये मंत्र हैं जो इन भगवानों को विवश कर देते हैं ऐसे अट्रैक्ट होने के लिए और खींचने के लिए। इसलिए सतनाम कहलाता है, ये जो दो अक्षर का मंत्र है ये सच्चा नाम है और इसी से प्रभावित होते हैं। तो अपने आत्मा ये जो पांच नाम है, पहले परमात्मा ने धर्मदास साहिब जी को कहा था ये पांच नाम देना, लेकिन अब परमात्मा ने आदेश दिया है कि ये सात नाम देना। पांच तो है ही है, तो इन सात नामों में क्या विशेषता बन गई कि मान लीजिए आपको सतनाम प्राप्ति हुआ नहीं और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये पहला और लास्ट वाले मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपको तुरंत ये मानव शरीर प्रदान करवाएगा तुरंत, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा दसवें महीने बाहर आ लेगा मां के पेट से गोदी में यहीं पर। और पहले ये मंत्र इसलिए नहीं दिए जाते थे क्योंकि ये नकली भी मंत्र इसी का शुरू कर देते हैं, और उसमें क्या था मालिक ये पांच नाम इसलिए देगी कि इनसे इनको या संसारिक थोड़े बहुत सुख मिलते रहेंगे, ये गणे दुखी ना होंगे, मोक्ष तो इनसे नहीं हो सकता इस तरह के जाप से, लेकिन समय पर रोटी कोठी और ये संसारिक व्यवसाय जो तुम समझते हो ये इससे ठीक चलते रहेंगे। तो इसलिए ये प्रदान किए जाते थे कि ये इनमें कुछ तो आस्था भगवान की बनी रहेगी, क्योंकि परमात्मा अलग दिखा देता है जो भक्ति करने वाले को कि मुझे आज लाभ भगवान की तरफ से हुआ है, ऐसे था। तो उस समय यदि मनुष्य जीवन शीघ्र भी मिल जाता तो भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सतनाम और सारनाम देने का वो टाइम नहीं था। अब ये समय आ गया सतनाम और सारनाम देने का, और इसमें वैसे तो मंत्र ये प्रथम मंत्र लेने के बाद भी आपको काल अटैक नहीं कर सकता, आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आप दास बार बार कहता है कि ये काल का दाव कैसे लगता है कि हम मर्यादाहीन हो जाते हैं, नाम खंडित कर देते हैं, और जिस समय आपका नाम खंडित हो गया और कुदरती आपके प्रारब्ध का मृत्यु का समय भी निकट आ गया उसी दौरान, तो आप अटैक हो जाएगा। कुछ एक ऐसे भक्त हैं जो नाम ले लेते हैं और नाम भी कई बार खंडित कर लिया और वो अभी तक जीवित है, तो अभी उनका वो ठीक का समय ना आया है, वो मृत्यु का समय नहीं होगा, इसलिए दाव लग रहा है। तो पुण्यात्मा आप जी ने नाम लेने के बाद मर्यादा को सबसे अधिक महत्व देना है, भक्ति से कम भी हो जा लेकिन मर्यादा रहे। जैसे आप जी समुद्री जहाज में बैठ गए, तो जहाज में बैठे हैं, जहाज चल रहा है और उससे नीचे उतरने की चेष्टा करोगे तो डूब के मर जाओगे। तो कुछ समय के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कैसी, और फिर मर्यादा रखने से लाभ होगा, मर्यादा खंड होने से कितनी हानि होती है। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे, ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होवे, छिन्न हो जा, नष्ट हो जाती है, ऐसे भक्ति जाए। अब जैसे माता को गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, बच्चे को, बेटा या बेटी को जो उसके गर्भ में पल रहा है, उसकी कितनी सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा गर्भ खराब ना हो जा। रात को करवट लेती है माता, तब भी उसको चिंता बनी रहती है कहीं मेरे बालक पर दाब ना आ जा। एकदम फड़क के उठती है, चलती है, कदम रखती है पृथ्वी पर, तो भी बड़े नाप तोल कर रखती है कहीं झटका लग जा, बच्चा खराब ना हो जा, तो अपना लाल प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार जिस दिन आपको उपदेश मिल गया उसी दिन आपके अंदर भक्ति का बीज गिर गया, ये सत्कर्म मान लेना। धीरे धीरे आप भक्ति की सब क्रियाएं करते रहोगे तो ये भक्ति रूपी लाल आपका अंदर फल पल रहा है, और इसमें थोड़ी सी मर्यादा हीन हो गए तो ये खंड हो जाएगा, अपने आप अक्षीण हो जाती है भक्ति। तो जैसे इसमें मर्यादा बहुत अनिवार्य है, जैसे सीता जी थी श्री रामचंद्र की पत्नी, वनवास में थे, कुटिया बनाकर रह रहे थे, एक बगीची भी बना रखी थी छोटी सी फुलवाड़ी सी फूलों की, तो उसमें एक ऐसी कोई घटना घटी इनके साथ, वो लंबी कहानी है या नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने एक रेखा खींच दी थी झोंपड़ी के चारों तरफ और सीता से कह दिया था लक्ष्मण जी ने कि माता, वो बड़ी भाभी थी उसको माता के तुल डील करता था, कि आप जी इस रेखा से बाहर ना जाना, जब तक आप इस रेखा में रहोगी आपको कोई हानि नहीं कर सकता, ना जंगली जानवर कर सकता, ना कोई दानव कर सकता, राक्षस नहीं कर सकता। और वो दोनों भाई फिर मृग के पीछे चले गए थे, एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया था, सीता ने कहा था इसको लाओ किसी तरह लाओ। अब दोनों भाई चले गए उस सीता के कहने से, पीछे से रावण लंका का राजा एक साधु बेस बनाकर वहां आया, सीता को उठाने के उद्देश्य से, अपहरण करने के उद्देश्य से। और जो ही वो निकट गया उसने कहा कि माई भिक्षा देना, तो सीता ने कहा आ जाओ महाराज कुटिया के निकट आकर ले जाओ। वो जो ही आगे को बढ़ा रेखा के निकट आते उसमें से अग्नि की लपट निकली, 10 कदम पीछे रावण भाग कर गिरा और कहा कि तुम साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दे। अब सीता ने अपनी जीव सोच से सोचा था के फर्क पड़े है, साधु है, अभी दे आती हूँ भिक्षा, अभी आ जाती हूँ वापस। अब वह भिक्षा लेकर बाहर को चली, रेखा पार कर गई और जो ही भिक्षा डालने लगी उसने बाजू पकड़ ली यहीं से और गेर ली कंधे पे, जा पिटकी नौ लखा बाग में। उसकी जरा सी लगी क्या फर्क पड़े, और के नाश करा दिया उसने। वह मूर्ख से तो ये कहकर गए थे इससे बाहर मत जाना, तेरे को हानि हो जाएगी। और फिर कितना नाश कराया, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब उसको छुटवा के लाए। तो पुण्यात्माओं ऐसे ये मर्यादाएं हैं, ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना जो मालिक ने बता रखी है। आन उपासना नहीं करनी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू को छूना भी नहीं है, किसी और देव पर आसक्त नहीं होना, हमने पति भर्ता पद पर आना है। जैसे जो पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत परितम में ऐसे ध्यान लगावे। पति भरता पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष से वो किसी प्रकार का भी उसको कोई वस्तु वांछित नहीं होती। कहने का भाव यह है, चाहे कोई सोने का स्वर्ण का बन करके पुरुष खड़ा हो जा, उसमें उसका पति वाला भाव नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम अपने कबीर परमात्मा और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अतिरिक्त किसी भी देव से, किसी भी अन्य देवता से, भगवान से हम कोई भी वस्तु नहीं मांगे। यदि उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान हमारा गया कि ये इससे अर्ज करो मुझे ये वस्तु दे दे, तो हम पतिव्रता पद से गिर गए। क्योंकि जो परमात्मा ने साधना बताई है उससे ये अपने आप देंगे। कैसे देंगे? एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सीचे मूल को फले फूले अगाए। एक कैसा दे सब सदे और सब साधे सब जावे, और माली यानी बुद्धिमान व्यक्ति, माली का अर्थ है जो बाग के पूरे प्रोसेस से परिचित होता है, उसको समझदार व्यक्ति यानी अपने जॉब का मास्टर। तो माली सींचे मूल को, माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। तो पुण्यात्मा आज जो प्रसंग चल रहा था पहले उसको पूरा करते हैं कि जैसे ये सभी काल के पंथ हैं और ये नाम सभी काल के देते हैं। पांचों नाम जैसा आपको घटरामायण में दिखाया था, पांचों नाम काल के जानो, पांच नाम जीव जब भाखा और छठवा नाम गुप्त कर रख्या, इंद्र छठवा नाम भी कोई नहीं। और फिर नीचे बताया है कि आदि नाम और सतनाम, आदि नाम ले काल गिराऊं, सतनाम ले जीव उभारी, अस्चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये दो अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है एक तत् है। श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का। एक ओम तत् सत केवल यही मंत्र है, नथिंग एल्स। पूरी श्रीमद भगवद गीता के अंदर केवल दो स्थानों पर नाम के विषय में जानकारी है। एक तो आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो तो गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और जो इसको अंतिम श्वास तक भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उससे परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से परम गति हो सकती है। ओम से कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है। और गीता ज्ञानदाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता जी में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी सिद्ध है कि ब्रह्म के मंत्र का जाप करने वाले भी जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग में ही ग्रस्त रहते हैं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना, कौन से सचिदानंद घन ब्रह्म? 8वें अध्याय के 1 मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे आत्म ज्ञान को जानकर और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के 1 श्लोक में पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और 4वें अध्याय के 32 और 34 श्लोक का ये निष्कर्ष है कि बताया है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। ब्रह्मणे मुख्य शब्द है मूल पाठ के अंदर 4वें अध्याय के 32वें श्लोक में, तो मूल पाठ में है ब्रह्मणे मुख्य। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया वहां पर, गीता अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी कर दिया। अरे भले आदमी, ब्रह्मणे वेद होता है, ब्रह्मण तो भगवान होता है जैसे, और वेद उसका संविधान है जैसे राजा और संविधान में जो अंतर है, राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो कितना बुद्धिमान होगा, कति मूर्ख है। तो ब्रह्म ने मुखे माने सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान उच्चारण किया वो सूक्ष्म वेद है। जो कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में बोला और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, कबीर वाणी है वो। तो यहां कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि वो तत्व ज्ञान है जो 32 में बताया, और चौथे अध्याय के 34 श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को गीता ज्ञान देता कहता मैं नहीं जानता, उसको तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। गीता ज्ञान दाता पूरी गीता जी में अपने विषय में 18वें अध्याय के और 65वें श्लोक में कहे कि मुझे नमस्कारू, मुझे नमस्कार कर, मुझ में भाव वाला हो, मुझे ही प्राप्त होगा, मेरी पूजा कर। और यहां कहता है कि उनको दंडवत प्रणाम कर, केवल तत्वदर्शी संत को ही दंडवत प्रणाम का विधान है। वो अपने लिए भी कहता है मुझे नमस्कार कर और दंडवत प्रणाम उनको कर, और वो तत्वदर्शी संत फिर तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो 15वें अध्याय के 1-4 और 16-17 श्लोक में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इस संसार रूपी वृक्ष की समझो ऊपर तो जड़ है, वो तो परोक्ष है, वो दिखाई नहीं देती जड़, जैसे पृथ्वी में वृक्ष की जड़ दिखाई नहीं देती, नीचे जो जमीन से तुरंत बाद हिस्सा दिखाई देता है पार्ट ऑफ द ट्री उसको तना बोलते हैं, और उससे ऊपर फिर मोटी शाखा होती है, और उस मोटी शाखा के फिर आगे मोटी डार होती है, उस डार के फिर शाखा होती है, शाखाओं के फिर पत्ते होते हैं। तो ऐसे बताया है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की ये सभी स्थिति क्लियर कर दे, तना कौन भगवान है, जड़ कौन भगवान है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित ऊर्धव मूलम अध शाकम यो अस्तोत्थम प्राहु अव्यम। अब क्या बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जो ऊपर को जड़ और नीचे को अधः शाखम, ये एक अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो, और छंदासी यस्य प्रणानी यानी इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, ये तम वेद सवेदवित जो इसको जानता है, इस सभी छंद को, छंद माने विभागों को, टुकड़ों को, हिस्सों को, जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को, विभागों को जानता है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। अब ये जानकारी किसने बताई, उस जगत गुरु तत्वदर्शी संत रूप में प्रगट परमेश्वर कबीर देव जी ने आज से 600 वर्ष पहले जो एक संत की भूमिका करने आता है, यथार्थ ज्ञान देने के लिए यहां प्रकट होते हैं, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, वो सतलोक में रहता है, ऊपर सचखंड में साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखा जाता है, वहां से ती करके नीचे संसार में आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, यथार्थ ज्ञान बताता है, ये उद्देश्य होता उसका आने का। तो उसी आधार से परमेश्वर सतपुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब काशी के अंदर एक दानक की भूमिका की और साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की, और परमात्मा सतपुरुष तो छह ही थे। तो उन्होंने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार। अब सीधे शब्दों में समझाए दास आपको, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार।